जे पूरब शिव गए जाहियरु आगे जय है सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। एक प्रक्रिया और है, जब भी हम किसी चीज के बारे में कथन करते हैं तो एक शैली है कि उसकी प्रशंसा करें। तो जो अपन ने सम्यक दर्शन के बारे में अध्ययन किया था तब सम्यक दर्शन की भारी प्रशंसा करी थी कि भाई इसके बिना तो कुछ भी नहीं। अब हम जब सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम सम्यक ज्ञान की भी उतनी ही प्रशंसा करेंगे, उतनी ही प्रशंसा करेंगे। कल हम सम्यक चारित्र को पढ़ेंगे तो हम उसको भी महत्व देंगे। हम तीनों को महत्व दे रहे हैं, कोई ये ना समझे कि सिर्फ इसमें से कोई एक ही महत्वपूर्ण है, तीनों ही महत्वपूर्ण। अगर हमने सम्यक ज्ञान की प्रशंसा की है तो अल्टीमेटली वो सम्यक दर्शन की ही प्रशंसा, और सम्यक दर्शन की प्रशंसा की है तो वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रशंसा है। एक माने एक की प्रशंसा में तीनों की प्रशंसा छुपी हुई है, क्योंकि अकेले एक से मोक्ष नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि कोई ये ना समझ ले कि सम्यक दर्शन से ही मोक्ष होता है या सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष होता है। अब इसमें यही बात कह रहे हैं कि जो जो पूर्व में शिव अर्थात मोक्ष गए हैं और आगे भी जो लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो सब महिमा किसकी है, ज्ञान की है, ऐसा मुनिनाथ अर्थात खुद जिनेन्द्र भगवान ने कहा। तो सिर्फ अकेले ज्ञान की महिमा हो गई तो क्या करें, हम सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र को प्राप्त ना करें? इतनी ज्ञान में दोनों समाये हुए। इस तरह इस बात को अपन यहाँ समझेंगे कि यहाँ ज्ञान की महिमा से आशय है, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही आवश्यक है, तीनों की यहाँ महिमा गाई जा रही। पर वास्तव में आत्मज्ञान ही या भेद विज्ञान ही माने प्राप्ति में उपाय भूत है।
ज्ञान को अगर केवल ज्ञान लें तो केवल ज्ञान तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों के मिलाने के बाद ही होगा,
वो तो उसका अल्टीमेट एम है,
रिजल्ट है। हाँ, तो वो जब अगर ज्ञान को यहाँ पे अगर केवल ज्ञान से लें तो ये जो ज्ञान कहा गया है जिसकी महिमा नाथ ने ऐसी कही है तो वो केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक हो ही नहीं।
अगर हम यहाँ पर केवल ज्ञान अर्थ लें तो वो मंजिल हो जाएगी, यहाँ बात कर रहे हैं मार्ग की,
मार्ग की बात।
इसलिए हमें मार्ग में तो सम्यक ज्ञान ही लेना पड़ेगा कि जब हम अपने मोक्ष को प्राप्त करते, मोक्ष में केवल ज्ञान है वो अलग बात है, और केवल ज्ञान या मोक्ष पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, सम्यक ज्ञान। तो वो सम्यक ज्ञान कैसे आता है तो ये अल्टीमेटली कहेंगे कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का अभ्यास करना है। ये हमें दोनों चीजें करवाना चाह रहे हैं कि एक तरफ तत्वाभ्यास करवाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आत्मज्ञान करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी हम मार्ग में हैं, इसलिए उस तरफ इशारा करते हैं। विषय चाह दवदाह जगत जन अजनी गझावे तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझा। कहते यहाँ पर विषयों की इच्छा संसारी जीवों को ज्वाला की तरह दवदाह, जैसे कि धावानल लग जाता है जंगल में, तो कहते जैसे धावानल जीवों को जलाता है ऐसे यहाँ पर इंद्री विषयों की चाहत जीवों को जला रही है। जगत जन अरणी दझावे, जैसे कि समस्त वस्तुओं को धावानल या जंगल में लगी हुई आग समस्त वस्तुओं को नष्ट कर देती है, इसी प्रकार से इंद्री विषयों की जो चाहत है वो भी संसारी जीव को सब प्रकार से दुख देती है या उसे नष्ट कर देती है। तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे, और उसके लिए तो एक ही उपाय है कि वर्षा हो जावे। जंगल की आग को बुझाने का एक ही उपाय है कि वर्षा हो जावे। घन घन का घन घान मतलब बादल, घने घने बादल। तो कहते यहाँ पर उस संसार की विषय कषाय की आग को बुझाने के लिए का क्या चीज है, तो कहते सम्यक ज्ञान। क्योंकि हम जब शास्त्र के माध्यम से और चार बातें अपने कल्याण की सीखते हैं तो मन को शांति मिलती है। तो बाह्य में वो जो श्रुत ज्ञान है वो भी हमें शांति देता है, और अगर श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम अपने आत्मा को का ज्ञान प्राप्त कर ले तब तो फिर हमें सुख है ही। वो सम्यक ज्ञान किसका काम करता है, कहते बादल के समान काम करता है उस दावानल के अग्नि के बुझाने की। पुण्य पाप फल माही हरक विलको मत भाई यह पुद्गल पर आय उपज बिन से थिर भाई। यहाँ पर कहीं कहीं पर थिर थाई भी है और थिर नाही भी है, दोनों अपन अर्थ समझ लें, दोनों में कहीं कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ तोरी सकल जब दंद पंद निज आत्म देव। अब अंत में जो है और मैसेज दे दिया, मैसेज तो दे ही रहे हैं और प्रेरणा दे दी कि पुण्य पाप फल माही यहाँ संसार में पुण्य और पाप इन दोनों के शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। पुण्य के उदय में हम हर्षित हो जाते हैं, जब पाप का उदय होता है तो हम विलखने लगते अर्थात विषाद में पड़ जाते हैं। तो इन दोनों चीजों से बचो। ज्ञान वास्तव में वो है जो कि हमें इस कर्म के उदय में भी समता धारण करने के लिए प्रेरित करे। तो अब वो चीज वहां प्रैक्टिकेबल क्या है ये बताना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकेबल तो ये है कि अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो कसौटी है उसकी कि अब आप अपने पुण्य और पाप के फल में जरा समता धारण करो, हर्ष विषाद मत करो, वरना तुम्हारा वो ज्ञान किस काम का। उस ज्ञान के माध्यम से पुण्य पाप के फल में हर्ष और विषाद नहीं करना, क्योंकि यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर नाही या थिर थाई। ये जो सुख और दुख रूप पर्याय हमारे अंदर उत्पन्न होती है और नष्ट होती रहती है, तो उत्पन्न होना, नष्ट होना और द्रव्य का रह आना, ये उत्पाद वे द्रव्य तो उसका स्वभाव है। हम उसके उत्पन्न होने पर हर्ष करते हैं, कभी कभी नष्ट होने पर भी हर्ष करते हैं और उत्पन्न होने पर भी हर्ष कर लेते हैं। उत्पन्न हमारे मन की पर्याय उत्पन्न होती तो हर्षित हो जाते, हमारे मन की उत्पन्न नहीं होती तो हम दुखी हो जाते। तो हर्ष और विषाद जो है ना उत्पत्ति और विनाश में मानने की आवश्यकता नहीं है। हर्ष और विषाद तो जो है उत्पत्ति और विनाश की अपेक्षा से ही बनता है। अगर हम वस्तु की ध्रुवता को देखें तो हमें हर्ष विषाद नहीं करेंगे। एक उदाहरण दिया इसके लिए कि एक राजा के एक बिटिया है और एक बेटा है। बिटिया चाहती है कि उसे कुंडल बन जाए कान के, और राजा के पास तो एक मुकुट है, तो राजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने सोने के मुकुट को तुड़वा करके और कुंडल बनवा रहा है। तो राजकुमार दुखी है कि मुकुट उसे चाहिए था, मुकुट मुझे मिल जाता, ये कुंडल तो बहन के लिए है। एक विषाद कर रहा है, एक हर्ष कर रहा है। राजा को हर्ष विषाद नहीं है, क्योंकि उनका सोना तो जो मुकुट में है सो कुंडल में है। पर्याय बदलने से कोई ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो अपने आत्मा और बाह्य पदार्थों के स्वरूप को समझता है, इसलिए उनके उत्पन्न होने और नष्ट होने में भी समान भाव रखता है कि इससे मेरा सुख और दुख इन दोनों के उत्पन्न होने और नष्ट होने से मेरा बिगाड़ नहीं होता है, मैं तो अपने आत्मा के ज्ञान में लीन रहूं, इसमें ही मेरा फायदा है, हर्ष विषाद न करूं। क्योंकि जब आत्म ज्ञान से च्युत होते हैं तभी हम हर्ष विषाद करते हैं। कहते ना अपन की जानो देखो बिगड़ो मत। हम जानते देखते तो हैं बिगड़ भी जाते हैं, वही हर्ष विषाद कर लेते हैं। हम उन क्षणों में अपने आत्मा से च्युत हो जाते तो कहते कि लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, सब लाखों बातों में एक बात है जो निश्चय रूप अर्थात कंफर्म पक्की तरह से अपने मन में इस बात को तय कर लो कि तोरी सकल जग दंद पंद निज आता। समस्त संसार के ये सुख दुख के जो प्रपंच हैं उन सबको अपने हाथ से समाप्त करके और अपने आत्मा का ही ध्यान करो। देखो इसमें सब आ गया, आत्म ज्ञान कहो या आत्म ध्यान कहो। आत्मा के ज्ञान के बिना तो आत्मा का ध्यान हो नहीं सकता। आत्म लीनता तभी आएगी। तो अल्टीमेटली अगर अपन देखें तो ज्ञान के साथ में जो लीनता है वही तो चारित्र है। ज्ञान ही जब लीन हो जाता है अपने आप में तो वही चारित्र है, और ज्ञान ही जब सिर्फ अपने आप की प्रतीति करता है तब वही श्रद्धान हो जाता है, और ज्ञान जब ज्ञान को जानने लगता है तब वही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान ही श्रद्धान रूप हो जाता है, ज्ञान ही आचरण रूप हो जाता है, और ज्ञान ज्ञान रूप तो है ही। इसलिए तीनों चीजें एक साथ, मैं तो सोचता हूँ कि इससे यही आशा लेना चाहिए। आत्मा के ध्यान करने से मतलब यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को अपने जीवन में प्राप्त करें।